डॉक्टर हुकुमचंद भारिल द्वारा किया गया निश्चय व्यवहार पर प्रवचन।
संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान।
भगवान महावीर के सिद्धांतों की चर्चा चल रही है, जिसमें उनकी वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, प्रतिपाद्य अनेकांत और प्रतिपादन शैली स्यादवाद की चर्चा हुई। स्यादवाद की चर्चा करते हुए एक बात सामने आई थी कि जब हम ही और भी का प्रयोग करते हैं तो कैसे करना, या तो हम अपेक्षा बता दें, जहां अपेक्षा बता दी जाती है वहां ही का प्रयोग होता है, और जहां अपेक्षा नहीं बताई जाती है वहां भी का प्रयोग होता है। और अपेक्षा बताना हो तो तीन प्रकार से बताई जाती है, ध्यान, कल इतनी बात हुई थी ना। या तो हम उस नए का नाम बता दें, या सीधी अपेक्षा बता दें, अथवा हम फिर एक कह दें किसी अपेक्षा, स्याद लगा दें, कथनचित लगा दें। ये तीन तरीके से लगाई जाती है। तो नए लगाना हो तो कैसे लगाना, आज का अपना ये विषय है, खासकर निश्चय व्यवहार के संदर्भ में। क्योंकि जो भगवान महावीर की प्रतिपादन शैली है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्यात्म की दृष्टि से निश्चय व्यवहार की शैली है, इसलिए आज अपन निश्चय व्यवहार की चर्चा करेंगे। देखिए, भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र तो भगवान आत्मा है, और अध्यात्म का सारा उद्देश्य ही भगवान आत्मा की शोध खोज है। इसलिए निश्चय व्यवहार नयों का प्रयोग आत्मा की शोध खोज की प्रक्रिया में ही आया है। वास्तव में बात ऐसी है कि कोई आदमी किसी के पास जाकर पूछे कि हीरा कहाँ मिलता है, झगड़ा जी, पर वो जवाब देवे कि पृथ्वी में, तो बात गलत तो नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में खदान है और वहीं हीरा मिलता है, है ना। लेकिन उसकी को प्राप्त करना कितना कठिन है कि सारी पृथ्वी को खोदें और उसमें से हीरा खोदें, एक कितना कठिन काम है। क्यों, फिर कहे कि भाई ये तो बात समझ में नहीं आई, तो फिर कहे कि भाई कहां मिलता है, तो पन्ना स्टेट में, वहां खदाने हैं और वहां हीरा मिलता है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इससे भी उस आदमी का काम तो नहीं हुआ जिसे अंगूठी में जड़ने के लिए अपने जमाई को एक अंगूठी हीरे की देनी है, बेटी को सही ख्याल में ना, और हीरा चाहिए, वो पन्ना की खदान में से हीरा खोद के लेने के लिए नहीं जाएगा, उसे लिए तो किसी जोहरी की दुकान बताओ, शोरूम है ना, तो उसका काम चलेगा। जैसे किसी एक व्यक्ति को हीरा चाहिए और उसे हम पृथ्वी में हीरा है ये भी सत्य है, पन्ने की खदान में हीरा मिलता है ये भी सत्य है, समझे ना, झूठ तो बात नहीं है, लेकिन उसका मिलना कितना कठिन है, और ये कथन सत्य कथन भी कुछ ना कुछ उपयोगी तो है ही। ऐसे ही किसी आत्मार्थी को भगवान आत्मा चाहिए। कौन सा भगवान आत्मा, जिसकी चर्चा सुबह चलती है 14वीं गाथा में, तो कहां मिलता है, धवल जी साहब, कि तीन लोक में, लोकाकाश में, बात झूठी तो नहीं है, वो भगवान आत्मा पंडित जी साहब लोकाकाश में तो है ना, अलोकाकाश में तो नहीं है ना। जैसे पृथ्वी में हीरा मिलता है ऐसे ही भगवान आत्मा भी लोकाकाश में मिलते हैं, ये बात 100% सत्य होने पर भी जिन्हें आत्मा का ध्यान करना है उनके किसी काम की नहीं है। क्यों? तो कहा कि भाई ये बात समझ में नहीं आई, ये बताओ ना कि सही कहां मिलता है। तो उन्होंने कहा देह देवल में विराजमान है भगवान आत्मा, शरीर में। कहा कि नहीं कहा, तो इससे कुछ काम तो हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में ना। तो ऐसा एक ने ये कहता है कि भगवान आत्मा लोकाकाश में रहता है, एक ने ये कहता है कि देह में रहता है, एक ने ये कहता है कि राग देश में रहता है, एक ने ये कहता है कि निर्मल पर्यायों में रहता है। क्यों? तो इन नयों की क्या उपयोगिता है और जैन दर्शन में इनको क्या स्थान मिला है? अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं निश्चय व्यवहार के, लेकिन हमें समझे ना कि इनकी उपयोगिता क्या है, आवश्यकता क्या है, जैन दर्शन में इन नयों को क्यों कहा गया है। तो देखो भाई साहब, जिसे हीरा की खोज में जो निकला है उसको यदि किसी ने ये बता दिया कि पृथ्वी में मिलता है, तो ये वाक्य भी सत्य तो है ही, निरर्थक भी नहीं है, बेकार भी नहीं है, क्योंकि इसने भी इतना काम तो किया ही कि तुम्हें हीरा की खोज करना है तो मंगल ग्रह पे नहीं जाना पड़ेगा, चंद्रमा पे नहीं जाना पड़ेगा, सूरज पे नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग और नरक में नहीं जाना पड़ेगा, इसी पृथ्वी पर मिलेगा। यानी उसने कुछ भी काम नहीं किया हो ये बात तो नहीं है, आपकी शोध की प्रक्रिया में बहुत काम किया, सारे ग्रह नक्षत्र छोड़ा दिए ना, सारे स्वर्ग नरक छोड़ा दिए ना, अब इसी पृथ्वी की बात रह गई ना, अनुपयोगी तो नहीं है। भेद विज्ञान की दृष्टि से बात करता हूं मैं, अभी दूसरी दृष्टि अलग है सदाचार की, वो बाद में बात करूंगा। पहले भेद ज्ञान की दृष्टि से उस नए का जिसने ये कहा कि हीरा पृथ्वी में मिलता है, एक कथन सत्य भी है और उपयोगी भी है, लेकिन इतने पे ही जमे रहने से हमारा असली काम सिद्ध नहीं होता है। तो इतना पता लग गया कि पृथ्वी में है, तो अब इससे आगे बढ़ो कि पृथ्वी में कहां, ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता है। तो अगला नए आया और उसने कहा पन्ना स्टेट में, तो इस नए ने भी बहुत बड़ा काम किया कि पृथ्वी तो बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें अमेरिका और रूस भी आते हैं, लेकिन उसने हिंदुस्तान के भी एक एरिया विशेष में 10-20 मील के एरिया को लोकेट कर दिया। तो कितनी छटनी कर दी इसने, तो इसने भी बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए एक नए भी कोई अनुपयोगी तो नहीं है और सत्य भी है, क्योंकि पन्ना स्टेट में हीरे की खदानें हैं ही। व्यवहार नए को झूठा तो हमने बहुत कहा, जरा मैं सत्य कहने की कोशिश कर रहा हूं उन मुमुक्षुओं में कि जिनके हृदय में ये जमा हुआ है कि ये तो झूठा लाल है। महाराज जी उसका असत्यार्थ पना भी बताऊंगा, घबराना नहीं, ये विषय तो 2-4 दिन तक चलेगा, लंबा है ना, लेकिन पहले इसको विचार करो कि उसकी उपयोगिता, उसका भी कोई उपयोग है, यदि नहीं होता तो जिनवाणी में उसे स्थान मिलने वाला नहीं था, जिनवाणी में स्थान वैसे ही मिल गया है। फिर उसने कहा कि पन्ने की खदान में नहीं बल्कि वो जो जोहरी की पुड़िया में, तो उसने भी कुछ काम किया। जब तक हम उस असली हीरे तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक धीमी धीमी गति से हम उसके नजदीक पहुंचते हैं, सीधा पृथ्वी से और जोहरी की दुकान तक नहीं पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही भगवान आत्मा रूपी हीरा खोज की जब बात आई और जिस नए ने ये कहा कि लोकाकाश में ही आत्मा है उसके बाहर नहीं, एक कथन जिनवाणी में आता है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या बाबा महाराज जी, लोक किसे कहते हैं जिसमें 6 द्रव्य रहे, आलोक किसे कहते हैं जिसमें अकेला आकाश हो, कोई नहीं हो, तो जीव लोकाकाश में जीव रहते हैं, ये हमारी जिनवाणी का वचन है कि नहीं है? क्यों? तो इसने इतना काम तो किया कि भगवान आत्मा की खोज करने तो ये अलोकाकाश में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक समस्या खड़ी हो जाती, क्योंकि हम अलोकाकाश में जा तो सकते नहीं है, और भगवान आत्मा कहीं अलोकाकाश में होता तो हमारी खोज कैसे होती? हालांकि हमारा केवल ज्ञान अलोकाकाश को भी जानता है, होता तो वहां से भी खोज लाता, क्यों? लेकिन केवल ज्ञान होता कैसे आत्मा की खोज के बिना? यानी अलोकाकाश में भगवान आत्मा नहीं है, इस नए ने भी हमारा बहुत काम हल्का किया है, क्योंकि जितना लोकाकाश है उससे अनंत गुणा अलोकाकाश है, हमारे दृष्टि के घेरे को इसने कम कर दिया है। खेमचंद भाई कहा करते थे ना कि आत्मा का अनुभव करना है तो रिड्यूस द रेडियस, ये दृष्टि के घेरे को कम करो, समझे ना? भाई अभी तो सारी लोकालोक हमारे दिमाग की है, हमें तो केवल ज्ञान चाहिए। काय को चाहिए केवल ज्ञान तेरे को? क्या करेगा केवल ज्ञान का? अरे साहब उसमें लोकालोक दिखता है, तेरे को अलोक की जरूरत क्या है देखने की? तेरा भगवान आत्मा तो अलोक में होता ही नहीं, जाता ही नहीं कभी। तेरे तो भगवान, तेरा सुख तो तुझे भगवान आत्मा के जानने से होने वाला है ना, पर के जानने से तो सुख है ही नहीं। तो अलोकाकाश को जानने वाला ज्ञान तुझे जानने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है केवल ज्ञान की? जिन्हें केवल ज्ञान की इच्छा नहीं होती है उन्हें केवल ज्ञान होता है, क्योंकि इच्छा का नाश होता है पहले और केवल ज्ञान होता है उसके बाद में। वीतरागता होती है एक समय पहले और सर्वज्ञता होती है एक समय बाद में। फिर दूसरे नए ने कहा है, इस नए का नाम क्या है मालूम शास्त्रीय भाषा में? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। क्या? फिर अगला नया आया कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा एरिया है, ऐसे तो भगवान आत्मा हमें मिलने वाला नहीं है, काम लोकाकाश में भगवान आत्मा को खोजें। तो उसने अगले नए ने कहा कि देह रूपी देवल में भगवान आत्मा विराजमान है। योगसार में तो ये लिखा है कि मूर्ख जन भगवान को तीर्थ और मंदिरों में खोजते हैं, और ज्ञानी जन तो मानते हैं कि भगवान आत्मा देह देवल में रहता है। देव मंदिर में रहे यह मूढ़ जन ही मानते, वे देह देवल में रहे ज्ञानी जन तो यों कहे। क्यों? उस नए को जिसने लोकाकाश में कहा था, उस नए को मानने वाले को यहां मूर्ख कह दिया कि नहीं कह दिया? तो यही तो उसका असत्यार्थ बना है। प्रोफेसर साहब क्या कहा? यही तो सच्चा। तो इस नए ने जो कहा कि देह रूपी देवालय में भगवान आत्मा विराजमान है, इस नए ने कितना काम हल्का कर दिया, सारे लोकाकाश पे से दृष्टि हटाकर अकेले यहां तक रह गई। क्यों? समय सार ने यहां से पकड़ी बात। बस 27वीं गाथा में लगा ना, व्यवहार नयो भासति जीवो देहो हवति कलु एको, नदु निश्चयेण जीवो देहो भी कदापि एकत्व। इसका नाम क्या है शास्त्रीय भाषा में? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। क्यों है मैं इस चक्कर में अभी नहीं पड़ता हूं, बाद में दो तीन दिन बाद देखूंगा कि कुछ तैयारी हुई है आपकी तो फिर मैं बताऊंगा विस्तार से। अभी तो यहां तक चलो कि इसने इतना कह दिया कि शरीर में भगवान आत्मा है, अथवा शरीर ही आत्मा है, कुछ भी सही, दोनों एक हैं। तो इस नए का भी ये बात सत्य है। क्यों? कि आत्मा यहां है, भले ही ये ना हो, इस दृष्टि से सत्य है और उपयोगी है, क्योंकि आत्मा की खोज में भटकने वाले का सारे लोग से दृष्टि हटकर दृष्टि यहां तो आई कि जहां आत्मा है वहां तो खोजने में दृष्टि आई कि नहीं आई? इसलिए इन दो असद भूत नयों ने भी, जिनको साफ साफ लिखा कि असद भूत माने जो सच्चे नहीं हैं, उनने भी हमारा इतना सहयोग किया कि सारे जगत से दृष्टि हटाकर हम यहां तक हमारी दृष्टि आ गई। है ना इनकी कोई उपयोगिता के नहीं, बोलो। और बात भी सत्य है, ये भले ही आत्मा ना हो लेकिन आत्मा यहां है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। एक भाई मेरे से बोले कि साहब आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा बोलो। कि हमने सुना है, एक आदमी ने हमसे कहा था कि आप आत्मा को हथेली पर रखकर दिखा देते हो। सच्ची सही घटना है बन्नी? मैंने कहा चुप, कि तुमने कहां सुना, किसने सुना? हमने तो किसी से कुछ ऐसा कहा नहीं है। नहीं नहीं साहब सुना, आप टालो मत, आप हमें बताओ, आप तो हथेली पे रख के बता देते हो आत्मा। मैं कहा तुम क्या बात करते हो, हथेली पे रखकर बताने की क्या जरूरत, हथेली में आत्मा है ना। मैंने कहीं से उठा के लाके हथेली पर रखे है, इसकी क्या जरूरत है, इस हथेली के अंदर ही आत्मा, भगवान आत्मा विराजमान है, तो ये देख सकता है तो देख, हम तो बता रहे हैं। तो ये सारे जगत से दृष्टि हटकर जिस नए ने हमें इस देह देवल तक ले आए, देखो तो हमारे आचार्य कितने पवित्र हृदय के हैं और कितने भाषा समिति के धारक हैं। हम तो देह को गालियां देते हैं, गंदी है, पल दिल लाद में थैली, कीकस बसादते मैली। वो कहते देह तो तेरा मंदिर है, तेरे भगवान आत्मा का मंदिर है, क्यों खोटी बात करें। वो तो कहते हैं ये यहां तक लाया है, लेकिन कोई देह को ही आत्मा ना मान ले, इसलिए अगला ने कहता भाई साहब देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, देह नहीं है, ये इस नए का भी निषेध किया। तो कहा कि कौन है आत्मा, हम कैसे जाने, कैसे जाने कि आत्मा है। तो एक आदमी बेहोश हो गया हो तो ये जिंदा है कि मर गया, डॉक्टर को बुलाया कि आप बताओ कि ये जिंदा है कि मर गया, तो उसे सुई चुभा के देखते हैं क्यों, और यदि वो रिएक्शन आता है, हाथ उठा के फेंकता है, दुख प्रकट करता है, रोता है, नाराजी प्रकट करता है, गुस्सा होता है, तो कहते हैं अभी जिंदा है, और कुछ नहीं कहता है तो क्या कहते हैं, मर गया है, चला गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि देह तो है और आत्मा नहीं है, तो देह आत्मा नहीं रहा, लेकिन यदि वो सुख दुख और राग द्वेष दिखाई दिए तो कहते हैं कि अभी यहां आत्मा है। तो तीसरा ने कहता है कि राग द्वेष जिसमें हो, जो सुख दुख का अनुभव करता हो, उसका नाम जीव है। पहले तो अपन ने जीव की परिभाषा यही पढ़ी थी ना पहले भाग में, जो खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, दौड़ते हो, सुख दुख का अनुभव करते हो, क्यों वे जीव है। वो इस नए की थी, इस नए की परिभाषा थी बाबा जी। वो कहने लगे यदि यही परिभाषा माने तो सिद्ध भगवान अजीब हो जाएंगे, क्यों ना वे खाते हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं, ना सुख दुख का अनुभव करते हैं, संसारिक सुख दुख का, विदेश से पार हो गए ना। वो परिभाषा कौन से नए की थी, कि ये राग द्वेष सुख दुख, इसका नाम शास्त्रीय भाषा में क्या है, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। तो इस नय ने भी एक काम तो किया कि जहां राग देश होगा वहां आत्मा गारंटी से होगा। देखो देह पर यह बात घटित नहीं होती है, जहां देह होगी वहां आत्मा होगा, तो मुर्दे में देह तो होती है, आत्मा नहीं होता है, अविनाभाव घटित नहीं होता है, समझ गए आप। लेकिन राग द्वेष के साथ अविनय भाव घटित होता है, इसलिए राग द्वेष आत्मा की पहचान का एक चिन्ह बन जाता है, समझे ना। इसलिए ये जीव है, उस नए ने कहा तो इस देह से भी आगे हटकर हम आत्मा की पर्याय तक पहुंचे, विकारी पर्याय तक, उसे हमने आत्मा का चिन्ह माना। लेकिन अगला नए कहता है ये बात भी झूठी है, ये तो सच्ची है रतनलाल जी। कौन सी? कि जिसमें राग द्वेष है वो जीव है, लेकिन ये सच्ची नहीं है कि जिसमें राग द्वेष हो वो ही जीव है, क्योंकि सिद्ध भगवान फिर अजीब हो जाएंगे, उनमें राग द्वेष नहीं है ना। तो वो असली आत्मा, कौन सा असली आत्मा, कि जिसका हमें ध्यान करना है, जिसका हमें कल्याण करना है, जिसका हमें श्रद्धान करना है, जिसे हमें जानना है इस शिविर में, वो भगवान आत्मा, वो राग द्वेष बाला नहीं है। राग द्वेष उसमें है पर राग द्वेष आत्मा नहीं है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्न है। देह में आत्मा है पर आत्मा देह नहीं है, देह आत्मा नहीं है। आत्मा में राग है पर राग आत्मा नहीं है। क्या मतलब? जैसे अपन बोलते हैं कि नहीं, कि ये आदमी है, इसका पिता ये है, तो ये पिता इसका, ये पिता ये तो नहीं है ना, और ये इसका पुत्र है, तो ये तो ये नहीं है ना। हर आदमी अपने पिता और अपने पुत्र से जुदा है कि नहीं है? तो देह में जो रहता है वो भी देह से भिन्न है, और राग जिसमें रहता है वो राग से भी भिन्न है। वो आत्मा देह में रहता है और आत्मा में राग रहता है, कैसी हालत है। तो आत्मा में जो राग रहता है उससे भी भिन्न है, और जिस देह में आत्मा रहता है उस देह से भी भिन्न है। लेकिन हम यहां तक तो आ गए ना कि जिसमें राग है वो आत्मा है, यहां आत्मा अवश्य है। अब वो राग आत्मा नहीं है तो कौन आत्मा है? कि ज्ञान आत्मा है। ये अगले ने बताया कि क्यों, तुमने कैसे जाना कि ज्ञान आत्मा है? तो एक वो पश्चिमी दार्शनिक हुए ना कांट, हमारे पंडित जी बहुत उदाहरण देते हैं उसका, नीति शास्त्र का तो बहुत बड़ा आदमी था। मैं वो भी नीति शास्त्र की बात नहीं करता हूं उसकी। उसने एक जगह लिखा कि मैंने अंदर में जाके आत्मा की बहुत खोज की, लेकिन मुझे कोई आत्मा फात्मा दिखाई दिया नहीं। ध्यान से सुनना पूरी बात क्या कहता है वो। जब जब मैंने अंदर झांक के देखा तो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ विकल्प जाल ही दिखाई देता है। पंडित जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई विनोबा जी की, मैंने भी चर्चा की थी जब 5 दिन के शिविर में आया था, नासागर दृष्टि की, याद है तुहाड़िया जी, नासागर दृष्टि की बात की थी कि नासागर दृष्टि क्यों होती है। मेरे में थोड़े अंगल में थोड़ा फर्क था बस। विनोबा जी की तो वहीं तक पहुंचे जहां तक पंडित जी ने बताई कि बाहर देखता हूं तो जिसको देखता हूं उसका ध्यान होता है, आंखें बंद कर लेता हूं तो विकल्प जाल उठता है, तो मैं तो नासागर दृष्टि रखता हूं, यही बढ़िया है। तो नासागर दृष्टि रखोगे तो नाक दिखेगी तो नाक का ध्यान होगा, मैं एक और नाक के ध्यान से मोक्ष हो गए। विनोबा जी बेचारे क्या करें, यहीं तक जा सकते थे। अब जैन दर्शन के लिए नासागर दृष्टि का दृष्टिकोण है, उसका क्या पीछे रहस्य है कि मैं क्या करूं इस आंख से? इस आंख से तो भगवान आत्मा दिखने ही वाला नहीं है, चाहे इसे खोल के देखूं और चाहे इसे बंद करके देखूं, क्योंकि आंख से, आंख है इंद्री और भगवान आत्मा अतिंद्रिय महापदार्थ है, वो इंद्रियों से पकड़ में कैसे आएगा? चाहे ना इंद्रियों के खोलने से पकड़ में आएगा और ना बंद करने से पकड़ में आएगा, तो फिर नासागर दृष्टि क्यों? नासागर दृष्टि जैन दर्शन में है ना सुशील जी, इसलिए कि हमने इस दृष्टि पे से दृष्टि हटा दी, हमने इस आंख को ना बंद की ना हमने खोली, वैसे ही छोड़ दी, फिर जैसी रह गई वैसी रहने दी। देखो खोलना भी पड़ता है प्रयत्न पूर्वक, और बंद भी करना पड़ता है प्रयत्न पूर्वक। अगल में भी देखना पड़ता है प्रयत्न पूर्वक और बगल में भी देखना पड़ता है प्रयत्न पूर्वक, ऊपर भी देखना पड़ता है प्रयत्न पूर्वक और नीचे भी देखना पड़ता है प्रयत्न पूर्वक। हम देखना बंद कर दें फिर आंख की हालत जैसी रह जाए, हमें कोई मतलब नहीं कैसी रह जाए, जैसी रह जाए वैसी रहने दें, और वो ऐसी रहेगी कि जब दृष्टि नासाग्र होगी उस वक्त भी आंख से नाक दिखेगी नहीं, दृष्टि नासाग्र होगी लेकिन नाक ज्ञान का गेय नहीं बनती है। हमने तो ढीली छोड़ दी, हमने कान को ढीला छोड़ दिया जैसे रह गए, हाथ को ढीला छोड़ दो डॉक्टर कहते हैं ना, तो क्या करें कैसा रखें कि जैसा रहेगा रह जाएगा, तुम तो ढीला छोड़ दो, समझ गए ना, तो तुम तो आंख के पलकों को ढीला छोड़ दो। अरे आंख बंद करना ये आलस की निशानी है, समझे ना, और आंख खोलना ये बाहर के लिए जागृति की निशानी है, जगत के प्रति सतर्कता की निशानी है। धवल जी की आंख खोलना ये दुनिया के प्रति हम सतर्क हैं, हम दुनिया को जानना चाहते हैं, इसकी निशानी है, और आंख बंद करना ये सोने की निशानी है। भगवान आत्मा आलस में नहीं आता है, क्यों लेटे लेटे भगवान आत्मा का अनुभव हो जाए तो क्या दिक्कत है, चलते फिरते हो जाए तो क्या दिक्कत है, कि चलते फिरते तो उपयोग को बाहर रखना पड़ेगा नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए जब चलेगा तो गारंटी से उपयोग बाहर रहेगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा पंडित जी साहब, और लेटे लेटे इसलिए नहीं होगा कि नींद आएगी तो आराम से सो जाएगा, अत्यंत जागृति की अवस्था में आत्मा का अनुभव होता है, इसलिए अपनी सामायिक की अवस्था में ध्यान नहीं बोलता हूं, क्योंकि ध्यान जरा खतरनाक शब्द हो गया, आजकल ध्यान के शिविर बहुत लगने लग गए ना, अपना तो सामायिक शब्द है पंडित जी, ध्यान तो अंतर्मुहूर्तात होता है उनका, जिनके केवल ज्ञान हो जाता है ना, उत्तम सहन नहीं से एकाग्र चिंता ध्यानो अंतर्मुहूर्तात, उसके नीचे तो आर्द्र रौद्र ध्यान होते हैं कि धर्म ध्यान भी होते होंगे, ख्याल में हमारी तो सामायिक बढ़िया, अपना बढ़िया शब्द है ना पुराना सामायिक शब्द, तो सामायिक की अवस्था अत्यंत जागृति की अवस्था है, जिसकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो गई हो और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया हो उसको छूट है, लेकिन तुम्हारा सब कुछ बढ़िया है एकदम ठीक है और फिर भी तुम सोते सोते आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, गारंटी से नहीं होगा, क्योंकि लेटना वो आलस की मुद्रा है और चलना फिरना ये बाहर की जागृति की मुद्रा है, सतर्क मुद्रा और दृष्टियों को ढीली छोड़ देना, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना और बाकी इंद्रियों को ढीली छोड़ देना, ख्याल में आया ना, आंख जहां रह जाए, कान जैसे हो हाँ, हाथ जहां लटके लटक जाए, शरीर पर से उपयोग हट जाए, ऐसी हमारी जागृति की मुद्रा है, इसलिए हमारी नासाग्र दृष्टि की बात होती है। अपनी बात तो क्या चल रही थी कि वो राग द्वेष जहां है वहां भगवान आत्मा है, ये बात सच्ची है, लेकिन जहां राग द्वेष है वहीं भगवान आत्मा हो ये बात नहीं है, राग द्वेष से रहित आत्मा भी आत्मा होते हैं, इसलिए हमने बताया ज्ञान उसका लक्षण, वो गुण को लक्षण बताया, पर्याय को लक्षण नहीं बताया, तो वो गुण जहां होगा वहां नियम से आत्मा होगा और जहां आत्मा होगा वो नियम से, अनुभव और वितरेक दोनों व्याप्तियां घटित होंगी, राग के साथ अकेली अन्वय व्याप्ति घटित होगी, वितरेक व्याप्ति घटित नहीं होगी, उल्टी नहीं घटेगी, जहां जहां राग वहां वहां आत्मा ये तो घटेगी, लेकिन जहां जहां आत्मा वहां वहां राग ये घटित नहीं होगी, तो जब घटने तो राग को लिया कि उसने भी हमारा काम किया था ना, आत्मा को पहचानने में हमारा सहयोग दिया ना, उसे धन्यवाद देने में क्या तकलीफ है, लेकिन वही जमे रहे तो कहीं ना किसी पर पदार्थ को आत्मा समझ लोगे, इसलिए ज्ञान हमने पकड़ा यहां तक लाया, ज्ञान सो आत्मा, कि जिसमें ज्ञान हो वो आत्मा। कहते भाई साहब ऐसी बेकार की बातें करने से क्या फायदा, कि ज्ञान जुदा और आत्मा जुदा। ज्ञान जिसमें हो वो आत्मा, ऐसी बात क्यों करते हो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, अरे आत्मा तो ज्ञान ही है। ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो, दो है ही नहीं, ये अंतिम निश्चय है। तो वो इतने व्यवहार जो लोकाकाश से लेकर हमें भगवान आत्मा तक लाए, वे हेय कैसे हो सकते हैं, जरा समझना। अनुपय सद्भुत व्यवहार, तो ये लोकाकाश से ज्ञान सो आत्मा तक ये लाने का काम तो भाई साहब व्यवहार ने किया है। अब इस विकल्प का निषेध करके वो ज्ञानमय आत्मा तुम्हारे ज्ञान का गेय बन जाए, ये काम करेगा निश्चय नहीं तो। क्यों, मेडिकल कॉलेज में हमारा लड़का भर्ती हो गया, बहुत डॉक्टर ही पढ़ता है, लेकिन भाई बहुत अच्छे प्रोफेसर, बहुत अच्छे कॉलेज, बहुत अच्छा है, लेकिन वो हाई स्कूल अच्छा है कि नहीं है, वो प्राइमरी स्कूल अच्छा है कि नहीं है, कि जिसमें पढ़कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने लायक योग्यता उसमें पकी है। क्यों नहीं तो भर्ती कैसे होता, बोलिए। अब अकेले कॉलेज मेडिकल कॉलेज को याद करते हो डॉक्टर जी, सुभाष जी, प्राइमरी स्कूल को याद क्यों नहीं करते हो। तो जिस नए नए लोकाकाश से लेकर ज्ञानम आत्मा यहां तक लाकर खड़ा किया, वो नए झूठा और हे कैसे हो सकता है। और जो लोगों को व्यवहार नए हे है और झूठा है, इसका तीव्र विकल्प है, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है, ये भी व्यवहार नय का कथन है सातवीं गाथा में। ये बात झूठी है, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है कि नहीं है, झूठी है तो है ही नहीं, फिर नहीं होना चाहिए ना, है कि नहीं है। अरे वो तो कोई अपेक्षा, वो तो कोई अपेक्षा है, वो तो गुण भेद का निषेध है, और गुणों का निषेध थोड़ी है। तो फिर जो नए इन्हें ये कह रहा है, ये समझ लो झूठा कहने से भगवान आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं रहेंगे। और दूसरी बात भी सुन लो कि केवल ही भगवान पर को व्यवहार से ही जानते हैं, निश्चय से नहीं जानते हैं। तो पर के बारे में उनने जो कुछ भी बताया, उनने जाना ना, तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि व्यवहार झूठा है तो वे पर को नहीं जानते हैं सिद्ध होगा। और जो भी उनने बताया, हमारे पास शास्त्र हैं कि उन्होंने भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये कहा, सुमेरु पर्वत, जो भी, वो सब झूठा सिद्ध होगा। बोलो, फैशन हो गया है उसे झूठा कहने का। इसने हमारा बहुत नुकसान किया। क्यों, गांव गांव में लड़ाई हुए, झगड़े हुए, निश्चय व्यवहार की पार्टियां खड़ी हो गई, झूठा लाल ने, झूठा है सच्चा है, झूठा है सच्चा है। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं कि तुम तो स्वामी जी को मटिया मेट करने पर तुले हो, उनने तो झूठा कहा था, वो तुम सच्चा सिद्ध कर रहे हो, सच्चे विरोधी तो तुम हो, ऐसे भी कहने वाले हैं पंडित जी, ऐसे कहने वाले हैं। मैं कहा भैया तुमने स्वामी जी को पढ़ा है, हमने सारी जिंदगी उनको पढ़ने में लगाई है, उनका रोम रोम और रग रग से हम परिचित हैं, तो फिर हे क्यों कहा। उसका भी अलग दृष्टिकोण है कि लोकाकाश में भगवान आत्मा है, इसको हे नहीं कहते, इसको झूठा नहीं कहते, तो तुम्हारी दृष्टि लोकाकाश में ही अटकी रहती। वहां से दृष्टि हटाने के लिए उसे हे बताना और उसको झूठा कहना जरूरी था, अन्यथा वहां से दृष्टि हटती नहीं। तो झूठा कहना था तो लोकाकाश में है ये बताया क्यों, क्योंकि अलोकाकाश से दृष्टि नहीं हटती थी। नहीं आई समझ में। तो एक बच्चा था, बाजार में गया, बढ़िया मारुति कार देखी, शोरूम था मारुति कार का, एक क्लर्क का लड़का था, 2000 रुपए महीने में नौकरी थी उस क्लर्क की बेचारे की, 500-700 रुपए तो मकान किराए में चले जाते थे। पर लड़का तो रोने लग गया कि मैं तो मारुति खरीदूंगा, पापा मारती लिवा दो, मैं कार लूंगा। तो बेटा ने पापा ने बहुत समझाया कि अपने पास कहाँ है, चांद में इतने बाल कहाँ है, अपन साइकिल खरीदने का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, 10 साल पुरानी साइकिल है और तू मारुति के सपने देखता है। लेकिन बेटा किस नहीं समझ, 5-7 साल का बेटा नहीं है, मेरे पड़ोसी के साथ में है, मेरे स्कूल के लड़के साथी लड़के के पास है, मारुति कार में आता है, मैं भी कल से स्कूल मारुति कार में जाऊंगा। अड़ गया, रोने लग गया। तो उसने पहले समझाया था ना, सत्य समझाया कि अपन की ताकत नहीं है, कभी खरीद नहीं सकते हैं, बेकार की बात मत करे। लेकिन उसकी समझ में नहीं आए, रोने लग गया। उन्होंने कहा तो तमाशा हो गया यहीं पर। तो बोला बेटा अपन घर चलो, कल पैसा लेके आएंगे तो खरीद के ले चलेंगे। समझे क्या कहा, अभी तो जेब में पैसा नहीं है ना, देख ले तू, जेब में खाली है, पैसा ही नहीं है तो कैसे खरीदेंगे, घर से पैसा लाएंगे ना। बात तो सफेद झूठ है, घर में इतने पैसे हैं ही नहीं। लेकिन अब उसे क्या करे, वो चौराहे पर तमाशा दिखा रहा बिना पैसा के, लौट गया, रोने लग गया। भीड़ इकट्ठी होने लग गई कि क्या है कि मारुति खरीदेगा तो खरीद क्यों नहीं देते। तो कहा देखो कल पैसे लेके आएंगे फिर अपन ले जाएंगे। कि देखो पापा झूठ मत बोलना, सचमुच ले आएंगे। हाँ बिल्कुल पक्की। क्या उसने कहे ये बात झूठी है, मैं तो झूठ बोल रहा हूं, एक कहे तो लड़का माने, वहां से हटके यहां आ गए। क्यों, हाँ खुशी खुशी चल कल लाएंगे। ए मारुति वाले एक कार बेचना मत, हम कल आएंगे, हमारे पापा पैसा लेके आएंगे तो एक कार ले जाएंगे, किसी को दूसरे को देना मत। तो नहीं नहीं आप जाओ, वे ही रखी है, तुम ले जाना। घर आए, अब घर आ गए, रात हुई सुबह हुई, इंतजार करते करते पापा चलो कहाँ, पापा तो भूल ही गए थे कि मारुति कार खरीदने। पागल हो गया है, अपने पास पैसे कहाँ हैं, कि तुमने कल तो कहा था कि तू नहीं मानता था इसलिए कहा था, कि झूठ क्यों बोला था, कि झूठ थोड़ी था, तेरे को वहां से यहां तक लाने का मेरे पास उपाय क्या था, या तो तेरा वहीं पिटाई शुरू करता तो बिना टिकट के दुनिया तमाशा देखती, अब तूने यहां गड़बड़ किया तो पिटाई होगी, अब यहां कोई तमाशा देखने वाला नहीं है, कार आने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन अब पिटाई होगी। तो ऐसे ही ये अलोका काश से ही नहीं हटता था नालायक, इसे लोकालोक को जानना है, लोकालोक को जानना है। तो कहा भैया तेरा आत्मा लोकाकाश में नहीं है, लोकाकाश में है तो वहां से इतनी दृष्टि हटाई, इसलिए लोकाकाश में बताया था, और लोकाकाश में था ये बात कोई झूठी नहीं थी, लेकिन अब लोकाकाश में दृष्टि अटक गई तो वहां से हटाने के लिए कि भैया लोकाकाश में कहां है, ये तो मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान मंदिर और तीर्थ में है, भगवान तो देह देवल में विराजमान है, तो उसको मूर्ख कहा के नहीं, उस नए को मूर्ख कहा के नहीं, छेड़ाला में कहा, देखो मैं बताता हूं, फिर यहां देह में कहा कि देह में भी नहीं है, आगे नहीं, उसमें लिखा है वो छेड़ा लगी पंक्ति आती ना, देह जीव को एक गिने बही रातम तात्व मुधा है, कि शरीर और आत्मा को एक माने वो बहिरात्मा है और वो तत्व के बारे में मूढ़ है ना, तत्व मुधा है, तत्व के बारे में मूर्ख है, देह और जीव को एक माने वो मूर्ख है। और समय सार में लिखा है 27वीं गाथा में कि देह और जीव एक है, व्यवहार नयो भासति दीहो देवो हवदि खलु इक्को, और व्यवहार नय कहता है, तो इस व्यवहार नय को मानने वाले को छेड़ाला में मूर्ख कहा कि नहीं कहा। लेकिन हम आपसे कहें कि इस व्यवहार को मानने वाला मूर्ख है क्योंकि ये व्यवहार झूठा है, तो आप हमसे लड़ते हो, और उन्होंने तरकीब से कह दी कि देह और जीव को एक माने वो मूर्ख है, तो एक एक वही तो मानता है व्यवहार में, और कौन मानता है, क्यों, तो किसी को ऐतराज नहीं है, देह और जीव को एक मानने वाले को मूर्ख कहो तो किसी को ऐतराज नहीं है, और व्यवहार में को मानने वाले को मूर्ख कहो तो सब लड़ते हैं, लेकिन बात तो ऐसी है कि काने से काना कहो तो एकदम आवे टूट, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। खुश काना का तो निरता है, भैया क्या हो गया, गिल्ली डंडा खेला था क्या, हुआ था बड़ा तुमको दुर्घटना हो गई। अरे भैया क्या बताएं, एक दफे ऐसा हुआ, बड़े बेचारा प्रेम से बता देता है। इनडायरेक्ट अर्थ में काना कहने का हुआ ना कि तुम काने हो, इसका ज्ञान कराया कि नहीं कराया। ऐसे ही तुम सीधा लाठी लेके व्यवहार में कोई झूठा कहो तो झगड़ा हो गई। अब तुम बताओगे व्यवहार में, कहता है कि शरीर और आत्मा एक है, और दौलत राम जी कहते हैं कि शरीर और आत्मा को एक माने वो मूर्ख है, तो व्यवहार में को मानने वाले मूर्ख हुए कि नहीं हुए। कहा जाने का छेड़ाला में लिखा, सब पढ़ते हैं सब खुश हैं। अरे भाई वो देह में आत्मा बताया था, उसका प्रयोजन था, क्योंकि ये आत्मा को खोजने के लिए तीर्थों में मंदिरों में भटकता था, यहां से वहां चक्कर ही चक्कर लगाया करता था, और यहां तरफ देखता ही नहीं था। तो वो देह में वहां से हटाने के लिए उसे झूठा कहने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, उसे हे कहने के लिए अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बोलो आप, तो जिन्हें हे कहने से और झूठा कहने से तकलीफ होती है, वे विचार करें, वस्तु स्थिति पे विचार करना है ना। फिर यहां आया तो यहां कह रहे कि नहीं, देह देवल में है पक्की बात है, लोकाकाश में नहीं है। और फिर कहते देह में कहां है, देह तो जुदा है, भगवान आत्मा जुदा है, उनके प्रदेश जुदे हैं, इसके प्रदेश जुदे हैं, वह असंग प्रदेश ही ज्ञानानंद स्वभावी है, ये रूप रस गंध स्पर्श वाला है, क्यों ये दोनों को ये बात सत्य नहीं है। तो ये उस नए को हे बताना हुआ कि नहीं, क्योंकि नहीं बताए तो देह की सेवा में ही जिंदगी गंवा दे, क्यों आत्मा की तरफ जावे ही नहीं, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, क्यों देह की संभाल, देह की संभाल, देह की संभाल। जो जो बुढ़ापा आता है त्यों त्यों देह की संभाल ज्यादा, क्यों झांझली जी सच बोलना। अरे पहले तो दुकानदारी को संभालते थे, धंधे पानी को संभालते थे, बाल बच्चों को संभालते थे, अब सबसे रिटायर्ड हो गए। बस पंडित जी मैं तो अपने सुबह से घूमने जाता हूँ, फिर इतना खाता हूँ, फिर ये खाता हूँ, फिर ये खाता हूँ, फिर ये पीता हूँ, और देह देह की संभाल रह गई। और देह संभलती नहीं है, तुम्हारे संभालने से संभलती है, सच बोलना है ईमानदारी से। जब हम देह को बिल्कुल नहीं संभालते थे तब दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती थी, दो बरस के थे तो कौन परवाह करता है अपनी देह की। बोलो अम्मा चिल्लाती है धूप में मत जाना, धूप में मत जाना, भागता है। अम्मा कहती है पानी में मत जाना बीमार हो जाएगा, पानी डोलता है, चाहे जो कुछ खाता है मिट्टी मिट्टी जो जो चीज मिले मुंह में लेता है, खाता कि नहीं खाता बच्चा, स्वास्थ्य की रंचमात परवाह नहीं करता है, और दिन दूना रात चौगना बढ़ता है। और जरा जवान हुआ तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगता है तो बढ़ना बंद, तेरे ध्यान से तो उल्टा होता है। 40-45 वर्ष की उम्र में आया तो ज्यादा ध्यान रखने लगता है तो धीरे धीरे ढीला पड़ना शुरू होता है, और 50-55-60 का हुआ रिटायर्ड हुए तो शरीर के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है, और दिन प्रतिदिन क्षीण होता है। तेरे ध्यान की जरूरत ही नहीं इसके शरीर को, ये अपने क्रम से बढ़ता है और अपने क्रम से घटता है। तो इस देह पे से दृष्टि हटानी कि नहीं हटानी, तो देह को आत्मा कहने वाले नए को झूठा कहें कि नहीं कहें, हे कहें कि नहीं कहें, क्यों परिणाम से ही बंद है, परिणाम से ही मोक्ष है, इसलिए ही जीव तुम परिणाम को पहचान लो। योगसार में कहा, क्या कहा, परिणाम से ही बंद होगा और परिणाम से ही मोक्ष होगा, काहे को शरीर मरीर के चक्कर में पड़ते हो। तुम अपने परिणामों को पहचानो, राग द्वेष करोगे तो बंद होगा, वीतरागता होगी तो मोक्ष होगा। तो वहां से देह से हटा के परिणामों पे लाए, दो नंबर को हटा के तीसरे पे लाए। पहला तो वो लोकाकाश था ना, समझ गया ना, देह पे लाए थे, अब देह से हटाकर कहां पे लाए, विकारी अविकारी परिणामों पर। एक भजन आता है कि नहीं अपना, बंद मोक्ष परिणामन हीते, कहा कहते थे ताते निज परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी, और बंद मोक्ष परिणामन हीसो कहत सदा श्री जिनवर बाणी। के परिणामों की समाल में गाफिल मत हो, मैंने परिणामों को समाल ढंग से, परिणाम ना बिगड़ जाए। देह बिगड़े तो बिगड़न दे, कोई चिंता की बात नहीं है, परिणाम बिगड़े और नरक जाएगा, परिणाम सुधरे और स्वर्ग मोक्ष जाएगा। इसलिए परिणामों की संभाल कर, क्योंकि ये लोग देह की संभाल में जिंदगी खराब कर रहे हैं। क्यों? तो देह की संभाल से हटाकर परिणामों की संभाल पर लाए। जरूरी था कि नहीं था मैं आपसे पूछता हूं, तो ये इसको हे कहें कि नहीं कहें, देह के संभालने वालों को बेवकूफ कहें कि नहीं कहें, झूठा कहें कि नहीं कहें, कि भाई ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वही हो रहा हो नागश्री जैसा, ये व्रत तो रख लेना तो लाना तो दे आऊं। क्यों कि साहब ये बात बढ़िया कि ये परिणामों को संभालो, परिणामों को संभालो, परिणामों को संभालो, ये बात तो ठीक है ना। कहा बिल्कुल सही है, परिणाम है अपन, परिणाम के अपन करता है, परिणाम को अपन संभाल सकते हैं। अब इसी छंद का मैं दूसरा अर्थ करता हूं पंडित जी, के परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो मूर्ख। परिणामों के संभालने से परिणाम नहीं संभलते हैं, ये परिणाम जिसमें से पैदा होते हैं उस परिणामी अपरिणामी तत्व को संभाल तो परिणाम संभलेंगे। तू तो परिणामों की संभाल में गाफिल हो रहा है, सारी जिंदगी परिणामों के संभालने में बिता दी, अपरिणामी तत्व को संभाला ही नहीं। पर्याय पर्याय, विकार नहीं करना, राग करना, विकार नहीं करना, राग नहीं करना, लेकिन विकार नहीं करना एक तेरे हाथ में है। मेरे से बहुत से लोग कहते हैं पंडित जरा बीमार कम पड़ा करें। मैंने कहा भैया तुम्हारी सलाह तो बहुत अच्छी है कि मैं बीमार कम पड़ा करूं, लेकिन मेरा बस चले तो मैं पढ़ू ही नहीं। मैं सोच सोच के बीमार पड़ता हूं, कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना। ऐसे में गुस्सा क्रोध मान माया लोग ये परिणाम मेरे बिगड़ते हैं, तो मैं सोच सोच के बिगाड़ता हूं कितने बिगाड़ना कितने नहीं बिगाड़ना। ज्यादा परिणाम खराब मत करो डॉक्टर साहब, तो कम करें खराब है। भाई साहब हमारा बस चले तो हम परिणामों को खराब होने ही नहीं दें, हम तो अच्छे से अच्छे रखें, लेकिन परिणाम तेरे हाथ में है ही नहीं। परिणाम को जो संभालते हैं उनके परिणाम नहीं संभलते हैं, जो परिणामों पर से दृष्टि हटा लेते हैं और अपरिणामी तत्व पर दृष्टि ले जाते हैं उनके परिणाम सुधरते हैं। तो परिणामों को ही सुधारना हो तो परिणामों को ज्ञान का गेय मत बनाओ, उत्तरकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ज्ञान का गेय बनाओ। तो परिणामों की समाल पागलपन है कि नहीं, साथ लगा ना, परिणामों की समाल में गाफिल मत हो। तू तो परिणामों की संभाल में गाफिल हो रहा है। अरे परिणामों को क्या संभालना, तू त्रिकाली ध्रुव को संभाल तो उसमें से जो परिणाम निकलेंगे वो गारंटी से परम पवित्र परिणाम होंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ही परिणाम होंगे। और जब तक तू मिथ्यात्व को नाश करने का उपाय करेगा मिथ्यात्व मजबूत होता जाएगा। क्यों? ना देह को संभाल ना परिणामों को संभाल तो क्या कर, कि तेरा जो भगवान आत्मा है परम शुद्ध निश्चय नय का विषय उसको संभाल। तो ये चारों ही व्यवहार है हो गए क्या नहीं, बड़ा व्यवहार है छे। गुरुदेव फरमाते थे ना कौन चार, कि एक लोकाकाश में जीव है, देह में जीव है, पर्यायों में जीव है और गुणभेद में जीव है। ये चारों व्यवहार है, वहां से लाए थे लोकाकाश से लेके यहां तक, इसलिए इनने बहुत बड़ा उपकार किया था। ये धन्यवाद देके विदा करो, जो उपकार करते हैं उन्हें घर में रखा नहीं जाता है। 11 तारीख को सबको समापन करके धन्यवाद देके भेज देना, नहीं तो कुवर ठीक हो जाएगी, 11 दिन में ही हो जाएगी। लाल जी पंडित तो अच्छे लोग हैं, एक से एक बढ़िया प्रवचन करते हैं, तो रख लो ना जिंदगी भर। 11वें दिन सब हे हो जाएंगे कि नहीं, 11 तारीख को कुछ लोग बीच में ही हो जाएंगे। विचार करो, अरे भाई उपयोगिता जब तक जिस चीज की है तब तक ही वो रखने योग्य है और रखी जाती है, उसके बाद उसको छोड़ देने में ही सार है। ख्याल में आया ना, मैं एक नियम बना रखा है, कम से कम मैं अभिनंदन कुमार जी के साथ 35 पंच कल्याणकों में गया हूं, लेकिन मैं पहले मैं कहता हूं चाहे जब से बुला लो, लेकिन केवल ज्ञान कल्याणक की रात में भाग जाता हूं। बहुत से बहुत मोक्ष कल्याणक के समय तक कोई गाड़ी मारी का हिसाब नहीं बैठे पंडित जी, तो मैं तो भगवान विराजमान होने के पहले ही भाग जाता हूं। दो चार जगह विराजमान करे होंगे, एक जयपुर में, एक आध दो जगह, बाकी मैं भाग जाता हूं। क्यों? कि देखो जमता हुआ मेला देखना, उखड़ता हुआ नहीं देखना। बहुत खतरनाक होता है कुछ नहीं। अरे बारात की आगमनी देखना, विदाई मत देखना, नहीं तो बारात में जाना भूल जाओगे। बारात की विदाई हो उसके दो घंटे पहले भाग जाना, तो तुम्हें अगली बारात में जाने का दिल रहेगा, नहीं तो जिंदगी में बारात में नहीं जाने की प्रतिज्ञा। हमारे जतीश भाई को तो बेचारे को तीन तीन दिन बाद तक रहना पड़ेगा, भगवान जाने कैसे निभा रहे। मैं तो नहीं रहता हूं, क्योंकि केवल ज्ञान कल्याण के दिन तक व्याख्यान होता है, अब मोक्ष कल्याण के दिन सुबह प्रवचन तो होगा नहीं, सुबह 5-6 बजे तो 7 बजे तो मोक्ष कल्याण हो जाएगा, अबे भगवान विराजमान करना, कोई सुनने वाला तो है नहीं, और उजड़ता मेला नहीं देखना, चढ़ता देखना। तो मतलब ये देह तुमको छोड़े उसके पहले देह को छोड़ देना, इसी का नाम तो समाधि मरण है हमारे यहां। क्यों? देह तुम्हें छोड़ के जाए, समझ में आया कि नहीं आया? देह तुम्हें छोड़े उसे पहले छोड़ के जाना। मैं तुम्हारे महुआ में था कैनम, तो वहां रोज ही नहीं ऐसा झगड़ा चलता था, अभी भी चलता होगा। तो मैं एक दफे उनसे कहता था, पंडित जी घबराना नहीं, मैं शाम को अकेला था, शादी भी नहीं हुई थी तब की बात है, तो मैं सुबह उठता था तो पूरा बिस्तर बांध के रस्सी से कस के, पहले रस्सी से कसते थे बिस्तर बंद, फिर बिस्तर बंद तो थे नहीं, और बिल्कुल पैक करके रख देता था, और शाम को द्वारा खोलता था रस्सी से, फिर सोता था। तो मैं कहा देखो तुम घबराना मत, मैं तो स्वयं बिस्तर बांध देता हूं, मुझे कभी भी जाना होगा तो बिस्तर बांधने की जरूरत नहीं है, मेरा बना रहता है, क्योंकि नेचर मेरा तेज था, अभी भी कोई ज्यादा ठंडा तो नहीं है, लेकिन तब तो बहुत ही ज्यादा था, बात बात में झगड़ा होता था। तो मैं कहता था कि तुमको सोचना नहीं पड़ेगा मुझे भगाने की, तुम्हारे मन में आएगा उसके पहले तो मैं बिस्तर लेके भाग जाऊंगा, समझे ना, तो ही तुम्हारी इज्जत रहने वाली है, कि सामने वाले को विकल्प आए उसके पहले तुम विदा ले लो। देह तुम्हें छोड़ा उसके पहले तुम छोड़ दो, घर में तुम्हें छोड़ा उसके पहले तुम घर छोड़ दो। नहीं अड़ियल लोगों की हालत बहुत खराब होती है, समझे ना, अड़ जाते हैं, घर में मरते हैं ना लोग, घर में मरना कोई अच्छी बात नहीं है, अड़ जाते हैं, घर वाले तो निकालना चाहते हैं लेकिन निकलते ही नहीं है, अपने मन से नहीं निकलता है, वहीं मर गया। तो फिर लोग उसे लकड़ी पर बांधते हैं कस के, क्योंकि आज तक जे घर छोड़ के जहां जहां गया नालायक लौट के आ गया, और अब इसको निकालो तो ना मालूम कहां से लौट के आ जाए, इसलिए कस के बांधो कि कहीं आना जाए छतरी पर से उठ के। फिर वहां ले जाकर उसको ऐसा नहीं छोड़ते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए पहले इसे जलाओ और सब खड़े रहो, सब लकड़ी दे दे करके जलाओ, इसकी राख हो जाए। तो राख को भी लपेट के उसमें रखो, कहीं उड़ के घर में ना आ जाए, क्योंकि घर में लौट के आने की आदत इसकी बहुत खराब थी, राख उड़ के आ सकती है ना, तो राख को गंगा जी में जाके डालो, कि उस पानी में घुल के सीधी जाके समुद्र में जाए, कि जिसमें लौट के आने के कोई चांस नहीं रहे। इतनी बेइज्जती करानी हो तो घर में मरना। क्या
देह को हमें छोड़ा उसके पहले देह छोड़ दें, राग हमें छोड़े उसके पहले राग को हम अपना मानना छोड़ दें। तू हम में है ही नहीं, तू मेरा कोई है ही नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। यहां तक पहुंचना क्या नहीं पहुंचना, वो पहुंचना तो सारे नए सारे व्यवहार नए हे हैं ऐसा माने बिना वो शुद्ध नए के विषय भूत त्रिकाली ध्रुव तक पहुंचा जा सकता नहीं, इसलिए हे हैं। भाई साहब आज मैंने तुम्हें निश्चय व्यवहार का स्वरूप भेद विज्ञान की मुख्यता से बताया, कल मैं आपको निश्चय व्यवहार का स्वरूप सदाचार की मुख्यता से बताऊंगा।
अमृत जर जुरजुरी आवे जिनवाणी, अमृत
जर जुरजुरी आवे जिनवाणी,
अमृत जर जुरजुरी आवे जिनवाणी,
अमृत जर जुरजुरी आवे जिनवाणी,
द्वांद संग बादल उमड़े,
द्वाद सांग बादल उमड़े,
द्वाद सांग बादल उमड़े,
द्वाद सांग बादल
ज्ञान अमृत रस खाने, ज्ञान
अमृत रस खाने,
अमृत जर झुरझुरी आवे जिनवाणे,
अमृत जर झुरझुरी आवे जिनवाणे,
साद वाद बिजरी अति चमके,
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 शुभ पदार्थ प्रगटाने,
शुभ पदार्थ प्रगटाने,
दिव्य ध्वनि गंभीर गरज,
दिव्य ध्वनि गंभीर गरज,
दिव्य ध्वनि गंभीर गरज,
दिव्य ध्वनि गंभीर गरज,
श्रवण सुनत सुख दाने,
श्रवण सुनत सुख दाने,
अमृत जर झुरझुरी आवे जिनवाणी,
अमृत जर
भव जीव मन भूमि मनोहर,
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 पाप कूड़क कर हानि,
पाप कूड़क कर हानि,
धर्म बीज तहां उगत नीको,
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 मुक्ति महा फल ठाने,
मुक्ति महाफल ठाने, अमृत जर झुरझुरी आवे जिनवाणी, अमृत जर
झुरझुरी आवे जिनवाणी,
ऐसी अमृत जर अति शीतल,
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 मिथ्या तपत भुजाने,
मिथ्या तपत भुजाने,
बुद्ध महा महाचंद्र इसी जर भीतर
बुध महाचंद्र इसी जर भीतर
मन सफल सो जाने
मन सफल सोई जानी अमृत जर झुरझुरी आवे जिनवाणी अमृत जर झुरझुरी आवे जिनवाणी
द्वादशांग बादल है उमड़े
द्वादशांग बादल है उमड़े
द्वादशांग बादल है उमड़े
द्वादशांग बादल है उमड़े ज्ञान अमृत रस खानी ज्ञान अमृत रस खानी अमृत जर झुरझुरी आवे जिनवाणी
अमृत जर झुरझुरी ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढो माता की।